न्यायियों उसका तीसरा अध्याय। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बालहिरमोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लेबनोन पर्वत में रहने वाले हव्वियों को, ये इसलिए रहने पाए कि वे उनके द्वारा इसराइलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इसराइली कनानियों हित्तियों अमोरियों परिज्जियों हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहरेम के राजा कुश्त्री शातेम के अधीन कर दिया। सो इसराइली 8 वर्ष तक कुश्त्री शोतेम के अधीन में रहे। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इसराइलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनियल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुश्त्री शातेम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुश्त्री शातेम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओतनियल मर गया। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इसराइल पर प्रबल किया क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालिकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इसराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इसराइल ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामिनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह महत्या था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांग पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास खेला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी पैट गई और फल चर्बी में धसा रहा क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के केवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के केवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाढ़ जोते जोते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोल तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुद भी मूर्तों की परली ओर होकर सेरे में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने अप्रेम में पहाड़ी देश में नरसिंह का पुकार। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे चले गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हुष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैन से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल को छुड़ाने वाला हुआ।